فصيل، سورة نحل مکی سورت ہے، 16 رکوع، 16 رکوع، 128 آیات، 128. اس کے دو نام ہیں، ایک تو النحل، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور یہ علامتی نام ہے. دوسرا نام ہے نعم. نعم، اور یہ نعمت کی جمع ہے، نون کے نیچے زیر کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گی. اور اس صورت میں اللہ تعالی کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر ہے، خاص طور پر اللہ کی جو عظیم نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے. اس صورت کے کلمات کی تعداد 2840 ہے، جبکہ حروف 7707. آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک قریش کو تنبیہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے اس کو آیا ہی سمجھو. یہ سورت مکہ میں ہجرت کے آخری دنوں میں نازل ہوئی. کفار نے اپنا یہ تکیہ کلام بنایا ہوا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لاتے کیوں نہیں جس کا تم ہمیں کہتے رہتے ہو. اور یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ آیا ہی چاہتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نضر بن حارث جو ہیں، جو کہ مکہ کا سردار تھا، میدان بدر میں وہ مارا گیا، اور اس نے بھی جو ہے یہ پوچھا تھا کہ وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے جو تم کہتے ہو. سورت الانفال آیت 32 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس سورت کا آغاز بڑا ہی زبردست ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکہ کی محفلوں میں، ان کے پنڈالوں میں کوئی بات ہے جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے، اور ان کا کوئی مطالبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مطالبہ ہے اس کا جواب دیا ہے سٹارٹ میں، بغیر کسی تمہید کے سیدھا کہا، اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوہ، بس اب اس کے لیے عجلت نہ کرو، اس کے لیے جلدی مت مچاؤ. اور اللہ کے فیصلے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں ہجرت کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، اور جب جو ہے وہ اگر کسی جگہ سے نبی ہجرت کر لے تو اللہ کے فیصلے سے مراد نبی کی ہجرت ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد اس قوم پر جو ہے وہ عذاب آ سکتا ہے. تو فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ. تو اللہ کے فیصلے سے مراد کیا ہے؟ کہ کفار کی سرکشی اور بدعملی کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کا حکم تھوڑے ہی دنوں کے بعد دے دیا گیا. اور جب ہجرت کا حکم دے دیا تو یہ حکم جو ہے یہ اب اہل مکہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے، یا تو اس کے بعد ان پر تباہ کن عذاب آئے گا جس کی وجہ سے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی، اور یا پھر یہ ہے کہ نبی اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح دے گا، اور ان کے ہاتھوں جو ہے یہ تباہ و برباد ہوں گے. اتا امر اللہ فلا تستعجلو، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اے اہل مکہ، اے کافرو، اے قریش والو، اب تم عذاب کا جو ہے وہ مطالبہ مت کرو. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، و تعالی، اور بالا اور برتر ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے فرمایا کہ جلدی وہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، تو ان کو شرک جو ہے وہ چھوڑ کر توحید اختیار کرنی چاہیے. یہاں پہ عذاب کا ڈراوا دے کر तौहीद की दावत दी जा रही है। आयत नंबर 2 में भी दलील दी गई है, और वो दलील क्या है? युनज़िलुल मलाइकाता बिर्रूही मिन अम्रही अला मन यशाउ मिन इबादिही। युनज़िलुल मलाइकाता कि अल्लाह नाजिल करता है फरिश्तों को, बिर्रूही रूह के साथ, तो अल्लाह भेजता है फरिश्तों को रूह के साथ, मिन अम्र ही अपने हुक्म के साथ। वो इस रूह को अपने हुक्म के साथ फरिश्तों को भेजता है। कहाँ भेजता है फरिश्तों को? अला मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पे वो चाहता है। तो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से फरिश्तों के जरिए नाजिल करता है। रूह के क्या मानी है? रूह, रूह जो है इसका लफ्ज कुरान मजीद में 3 मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक तो वो रूह जो जिस्म के अंदर होती है, जिसकी वजह से जो है वो जानदार हरकत करते हैं, जब रूह निकल जाती है तो जानदार बेजान हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, रूह जो है ये फरिश्ते को कहा जाता है, जैसे हमने मरियम की तरफ अपनी रूह या फरिश्ता भेजा। इससे मुराद आम फरिश्ता भी हो सकता है रूह से मुराद, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो तब होता है उनका नाम जब रूहुल कुदस या रूहुल अमीन का लफ्ज आए। तो एक मानी जो है वो फिर फरिश्ते के भी हैं, और तीसरे मानी रूह के वो पैगाम है जो फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से लाए, और इससे मुराद वही भी हो सकती है और सारा कुरान भी। तो इस तरह रूह के लिए, रूह का जो लफ्ज आता है कुरान में, ये 3 मानी देता है। जिस्म में रूह नंबर 1, नंबर 2 रूह से मुराद फरिश्ता, आम फरिश्ता या जिब्रील अलैहिस्सलाम, और तीसरे मानी फरिश्ता जो वही लाता है। सारा कुरान भी हो सकता है या जो भी पैगाम फरिश्ता लेकर आता है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से फरिश्तों के जरिए से नाजिल करता है। तो यहां पर जो है रूह से मुराद वही इलाही है, क्योंकि वो इंसान की हदायत के लिए रूह की हैसियत रखती है, और उसे लाने वाले फरिश्ते कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है, जिस पैगंबर पर, जिस नबी पर चाहता है अपने हुक्म से फरिश्तों के जरिए नाजिल करता है। पहले मक्का क्या कहते थे कि रसूल अल्लाह को जो है वो रसूल क्यों बनाया गया? एक यतीम को, गरीब को, मक्का के किसी सरदार को क्यों नहीं बनाया गया? अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरी मर्जी है, ये फैसला करना कि किसको जो है वो वही, किस पर वही नाजिल की जाए, ये मेरी मर्जी है। और वही के नाजिल करने का मकसद क्या है? अन अनजरू, के डराओ, आगाह करो। किस चीज से आगाह करना है? अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। दो बातें कही जा रही है। नंबर 1, अन्नहु ला इलाहा इल्ला, कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। फिर ये बात कहने के बाद कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, इल्ला अना फत्तकून। दूसरी बात, बस डरो मुझसे। तो जब अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है तो लिहाजा तुम मुझी से डरो। इसके मानी ये हैं कि एक अल्लाह की बंदगी की दावत, और दूसरा उसी अल्लाह का तकवा इख्तियार किया जाए, उसी अल्लाह से डरा जाए, उसी अल्लाह की बंदगी की जाए, उसी की अताअत की जाए। तो असल तौहीद क्या है? अल्लाह का तकवा। और असल तकवा क्या है? कि अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसको इख्तियार किया जाए, जिन चीजों से मना किया है उसको छोड़ दिया जाए, अपनी मर्जी खत्म कर दी जाए, और अल्लाह से ऐसा डरें जैसा कि डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। और ये बात जो है आप पहले भी सूरत आल इमरान में जो है वो पढ़ चुकी हैं। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो बयान किया है कि जो वही नाजिल की जाती है इसका मकसद क्या है, कि तौहीद की दावत और फिर अल्लाह का तकवा इख्तियार किया जाए। आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो कायनात है, आसमान जमीन, इनकी पैदाइश का मकसद बताया है। तीन से लेकर आठ तक आसमान, जमीन, इंसान, जानवर, कई मुफीद चीजों की तखलीक का जिक्र करके जो है वो तौहीद की दावत दी है। और तीन में भी देखें कि आसमान और जमीन की पैदाइश का मकसद बताया, खलक समावाती वल अर्द बिल हक, उसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया है। बरहक पैदा करने का मतलब क्या है कि इनके पैदा करने का मकसद जो है वो इम्तहान है। ऐसे ही नहीं जैसे बच्चे खेलते हैं, रेत के घरोंदे बनाते हैं, थोड़ी देर में तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा कि बनाया और खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि इसको बनाने का मकसद है। और मकसद क्या है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसान अपने अमाल की जजा या सजा पाएगा। ताला अम्मा युशरिकून, वो बहुत बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। तो अहले मक्का क्या कर रहे थे? शिर्क कर रहे थे। तो कहा कि अल्लाह उस शिर्क से पाक है जो ये लोग करते हैं। आप क्या करती हैं? आप किसकी बंदगी करती हैं? आप अपने आप से बार बार ये सवाल पूछा करें, मैं किसका कहना मानती हूँ? बंदगी जो है ना, आज के मुसलमान ने सिर्फ नमाज, रोजा, हज, जकात तक महदूद कर ली है। 5 वक्त की नमाज, 1 महीने के रोजे और जिंदगी में एक दफा हज कर लेना और फिर जकात दे देना, तो कहते हैं कि हम बंदगी कर लेते हैं। इसको सिर्फ बंदगी नहीं कहते, ये बंदगी का एक पार्ट है, सिर्फ इबादत का। मामलात को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढाल देना, इखलाकियात भी अल्लाह की पसंद के मुताबिक इख्तियार करना, अकायद को भी दुरुस्त करना। तो पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, अपनी पूरी सलाहियतें, अपनी कुव्वतें, अपने औकात, लेना देना, मिलना जुलना, बिछड़ना और मिलाप करना, जो कुछ भी है वो अल्लाह की बंदगी में जो है वो ढाल लिया जाए। तो जो है इसको तकवा कहते हैं, इसको तौहीद कहते हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 4 से यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी खूबसूरत जो है वो दलील दी है। और इसमें दलील में इंसान जो है इसका जिक्र किया है कि वो इंसान जो कि हकीर इंसान, पानी की एक बूंद से पैदा किया जाता है, फिर वो अल्लाह के बारे में झगड़ता है कि मरने के बाद इसको कौन दोबारा पैदा कर सकता है। अल्लाह की परवरदिगारी और रबूबियत की निशानियां जो जमीन के चप्पे चप्पे पर, दरख्तों के पत्ते पत्ते पर, समंदर के कतरे कतरे पर, जगह जगह कायनात के अंदर कदम कदम पर मौजूद है, और इंसान जो है उन निशानियों का इनकार करता है। हकीर से, नुतफे से पैदा होने वाला इंसान, इसकी तुगयानी तो देखो कि वो अल्लाह के मुकाबले में जो है वो झगड़ने लगा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो दलील दी है, खलकल इंसान मिन नुतफतिन, कि पैदा किया इंसान को नुतफे से। नुतफा जो है किसे कहते हैं? जरा सी बूंद को कहते हैं। यही इसका जो है वो रूट भी है, नून तोए फा, और इसके मानी है नून तोए फा के टपकती बूंद, जिसे जो है वो फिर इंसान की तखलीक होती है। तो हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया, जरा सी बूंद से पैदा किया, फाइजा हुआ खसी मुबीन, फाइजा फाइजा बस अचानक, इजन अचानक, यहाँ पे वैसे इजा है लेकिन यहाँ मानी अचानक है, बस अचानक जरा सी बूंद से, हकीर से, नुतफे से इंसान जो है जब पैदा होता है, जीता जागता बनता है, तो क्या करता है कि बड़बड़ कर बातें करता है। तू किस शक्ल में था? तू कहाँ से निकला? माँ के अंधेरों से और माँ के पेट के अंधेरों से कहाँ पहुंचा? कैसी जो है मुश्किलात में से गुजरता हुआ तू जवानी की उम्र को पहुंचा, और अब अपने रब को भूल कर अपने रब से लड़ता है, झगड़ता है। फाइजा हुआ खसीम मुबीन, खसीम जो है खा स्वाद मीम, और इस खसम, इसके माने होते हैं झगड़ा करना, खसीम झगड़ालू को कहते हैं। मुबीन जो है लाजिम और मुतदी, खुला झगड़ा, और यहाँ पे ये फईल के वजन पर है, खसीम मुबीन मुबालगा भी है इसमें। तो इंसान एक झगड़ालू हस्ती बन गया। अब यहाँ पे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो दलाइल दिए हैं कि क्या क्या नेमते हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो अता कर रखी हैं। उन दलाइल की तरफ जो है वो इशारा है कि अल्लाह अल्लाह की अता तो देखो, अल्लाह की अनायत तो देखो, अल्लाह की नेमतें तो देखो कि इतनी नेमतें और तुम्हारा फिर ये हाल। वल अनआमा खलकहा, उसने जानवर पैदा किए। और सूरत अल अनाम जो है वो आप पढ़ चुकी हैं और इससे मुराद जो है मवेशी हैं, तो चौपाए जो हैं ये चरने वाले जानवर, ये किसने पैदा किए? अल्लाह ने पैदा किए। बल अनआमा खलकहा, उसने जानवर पैदा किए। लकुम फीहा दिफ़ुन, इसमें तुम्हारे लिए दिफ़ुन है। दाल फा हमजा, इसके मानी होते हैं चौपायों के बाल और ऊन जिनसे बने हुए लिबास सर्दियों में गर्मी हासिल करने का जरिया बनते हैं। तो दाल फा हमजा जो है गर्मी हासिल करने का सामान या सर्दी का वो गर्म लिबास जो इंसान जो है वो पहनता है, सर्दी की पोशाक दिफ़ुन। तो उससे जो है क्या करते हो, लकुम फीहा दिफ़ुन, उसमें तुम्हारे लिए पोशाक है, उसमें तुम्हारे लिए सर्दियों में गर्मी हासिल करने के लिबास हैं। तो मुनाफ़ेउ, और भी दूसरे फायदे भी हैं, तो जानवरों से दूसरे फायदे भी हासिल किए जाते हैं। जानवरों से दूसरे फायदे क्या हासिल किए जाते हैं? जानवरों से जो दूसरे फायदे हासिल किए जाते हैं, जैसे जो है वो उनका गोश्त खाना, उन पर जो है वो सामान को जो है वो लादना, उनसे जमीन जो है जमीन में काश्त करना। तो जानवर जो है इंसान इंसानों के लिए अल्लाह ने मुती कर दिए। व मुनाफे और बहुत से फायदे हैं। व मिनहा ताकुलून, और तुम इनसे जो है वो खाते भी हो। तो जैसे जो जानवर है उनका जो गोश्त खाया जाता है, यहाँ पे उसका अलग जिक्र किया जा रहा है। अब आप देख लें कि जानवरों के गोश्त का और इस नेमत का अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, और बाज लोग बड़ी उससे कहते हैं कि हम तो गोश्त नहीं खाते। तो ठीक है, अगर कोई शख्स अपनी किसी मर्ज की वजह से या अपनी तबीयत की वजह से कोई चीज नहीं खाता, तो उसको हकारत से या नफरत से ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं खाते। तो अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का हवाला दिया है। अहले मक्का जो थे वो बद्दू थे, उनकी असल दौलत चौपाए थे। इसी से, इन्हीं चौपायों से वो अपना लिबास खुराक हासिल करते और दूसरे फवायद जो थे वो हासिल करते थे। यही जानवर इनकी जो थी, इनकी गाड़ियां भी थी, इनके जहाज भी थे, उनपे सामान लादते, एक जगह से दूसरी जगह जाते और खानाबदोशी की जिंदगी बसर करते। वलकुम फीहा जमाल उन हीना तुरीहूना वहीना तसरहून, और इन जानवरों में तुम्हारे लिए एक जमाल है। जी मीम लाम, इसके मानी होते हैं शान व शौकत, दौलत, अजमत। जमाल का लफ्ज जो है ये हुसन के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इन जानवरों में क्या जमाल है, इसकी तफसील बताई जा रही है। कब कैसे जमाल होता है? हीना तुरी हूना वही ना तसराहून। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो मंजर कशी की है कि अगर किसी की जो है वो दौलत का, अजमत का, सरवत का अंदाजा करना हो, तो अहले अरब के यहाँ ये देखा जाता था कि इनके पास जानवर कितने हैं। जैसे देहाती इलाकों में आज भी जो है वो जो देहाती लोग होते हैं किसान, उनकी दौलत का अंदाजा करने के लिए जो है वो ये देखा जाता है कि उनके पास मवेशी कितने हैं, जानवर कितने हैं। जैसे आजकल आप देखें, आप लोगों ने कुर्बानी करनी है तो आप देखें कि एक बकरा 30,000 20,000 का मिल रहा है, और जो गाय है उसकी कीमत लाख तक के करीब है, तो 1 लाख तो या इससे भी ज्यादा होगी या इसके करीब होगी। तो क्या है कि ये उनकी दौलत और सरवत का जरिया समझा जाते थे। जिसके पास जानवर ज्यादा होते थे उसको बड़ा आदमी वो समझते थे, और शान और शौकत वाला, दौलत और अजमत वाला, और जिसके पास कम जानवर होते थे तो उसको वो छोटा आदमी समझते थे। तो यहाँ पे उनको यही बात बताई जा रही है कि वलकुम फीहा जमाल उन, कि इन जानवरों में तुम्हारे लिए जो है वो जमाल है, शान और शौकत है। कैसे पता चलता है इस जमाल का, दौलत का, शान और शौकत का? हीना तुरी हूना वहीना तसरा हून, बड़ा खूबसूरत कुरान का अंदाज है। हीना ना जब तुम सुबह इन्हें चरने के लिए भेजते हो, वही न तसरहून, और जब तुम उन्हें जो है वो शाम के वक्त जो है तुम चरा कर लाते हो, और जब तुम सुबह जो है वो चराते हो। अब यहाँ पे तुरीहून और तसराहून के दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, और हीना जो है ये जब के लिए आता है। तो तुरीहून का रूट क्या है? तुरीहून का रूट है रा वो हा, रा वो हा, और इसके मानी है जानवर को शाम के वक्त चरागाह से घर वापस लाना। रा वो हा, तो शाम को जब जानवरों का गल्ला जो है चरागाह से घर वापस लाया जाता है, तो उसको जो है वो रोहन कहते हैं। सरहुन जो है उसको चरने चुगने के लिए सुबह के वक्त छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्या करते थे कि चरने चुगने के लिए सुबह के वक्त जानवरों को जो है वो छोड़ देते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाम के वक्त वापस लाने का जिक्र पहले किया है और सुबह के वक्त उनको चरने के लिए छोड़ने का जिक्र बाद में किया है। तो इसकी वजह यह है कि शान का इजहार मकसूद है। तो जब उनके जानवर शाम को वापस आते थे तो उस वक्त जानवरों की शान और शौकत का ज्यादा इजहार होता था, क्योंकि चरागाह से जानवर चर चुक के ताजा होते थे, और जो है वो दिन भर खा के फ्रेश होकर वो आते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने शाम का जिक्र जो है पहले किया कि जब शाम के वक्त तुम उन्हें वापस लाते हो, और बाद में जो है वही ना तसराहून का जिक्र जो है वो किया है। और आप जो है ये सरहून का लफ्ज जो है वो औरतों के लिए भी पढ़ चुकी हैं, जब उनको जो है वो तलाक देना, उन्हें छोड़ देना, सर्रहू होना या तसरीहुम बिल एहसान, है ना, वहां भी आपने पढ़ा था। तो असल में ये जानवरों को चरागाह में चरने के लिए छोड़ देना, और एक खुशबूदार पौधे को भी कहते थे जिसको चरने के लिए जानवरों को छोड़ते थे, तो पौधे के साथ फिर वो जानवरों को चरने के लिए छोड़ने के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसी तरह ये तलाक देने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। तो बहरहाल तसरीहुन जानवरों को चरने के लिए खुला छोड़ देना। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तुम सुबह उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जब शाम को उन्हें वापस लाते हो, और जानवरों से क्या फायदे हैं मजीद बताए जा रहे हैं, उसकी तफसील। वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशिक्किल अनफुस वतहमिलु अस्कालकुम, और वो उठाते हैं तुम्हारे बोझ। साक वाफ लाम सिकल की जमा है, और वो उठाते हैं तुम्हारे बोझ। इला बलादेन, इन शहरों तक। लम तकूनू, नहीं थे तुम बालिग ही इनमें पहुंचने वाले। तो ये जो जानवर हैं ये तुम्हारा बोझ उठाकर, तुम्हारा सामान उठाकर ऐसी ऐसी जगहों पर तुम्हें ले जाते हैं जहां तक तुम नहीं पहुंच सकते। लम तकूनू बालिग ही, बलगा पहुंचना, और बालिग जो है वो बालिग के मानी क्या है कि एक खास मकाम तक पहुंचना, तो जहां तुम नहीं पहुंचने वाले थे। इल्ला मगर बिशिक्किल अनफुस, शिक जो है मुशक्कत के मानी में है, मुश्किल, मुशक्कत के साथ मगर तुम पहुंचते हो। अल अनफुस तुम्हारी जाने, नफ्स की जमा है। तो सहराई इलाकों में सफर का और सामान उठाने का ज्यादातर इन्हेसार जो है वो जानवरों पर होता है। जानवर तवील से तवील और पुर मुशक्कत सफर करते हैं, गर्म दिनों में, गर्म मुल्कों में, खास तौर पर सहराई इलाकों में, और उस वक्त कोई और जानवर जो है वो इसका और उस वक्त कोई और चीज इसका नेमुल बदल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसी का जिक्र किया जा रहा है कि ये क्या है, ये अल्लाह की नेमते हैं। ये सब किसने पैदा किया, ये तुम्हें किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब जो है रऊफ भी है तुम्हारे लिए और रहीम भी है। मेरी प्यारी बहनों, आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी दो सिफात का जो है वो हवाला दिया है, एक मेहरबान और दूसरा जो है वो रहीम की सिफत है। रऊफुन जो है, आप पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं, इसका रूट है रा हमजा फा, और बाज लोग जो है इसका नाम भी रखते हैं जैसे राफत। इसके मानी क्या है? इसके मानी है कि किसी को तकलीफ में देकर दिल भर आना और रिक्कतदारी होना, उस पे तरस खाना। तो रकीकुल कल्ब कहते हैं रऊफ को, नरम दिल, कि किसी का दुख देकर जी भर आए, और नंबर दो उसका दुख दूर करने की फिक्र करना, और ये अल्लाह की सिफत है। और मोमिन जो है वो अल्लाह की सिफात का परतो है, तो ये सिफत हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि किसी को दुख तकलीफ में देकर दिल भर आए और फिर हम मदद करें ताकि उसकी दुख और तकलीफ जो है उसको दूर किया जाए। और दूसरी सिफ जो अल्लाह ने इस्तेमाल की है वो रहीम की है, रहीम की। और रहीम के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, नंबर एक रिकत, नंबर दो लुत्फ, नंबर तीन राफत। रहीम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि मैं बहुत मेहरबान हूं, मैं बहुत मेहरबान हूं। तो पहली अल्लाह की सिफत है मेहरबानी के लिए रहमान की, दूसरी रहीम की, तीसरी रऊफ की, चौथी लतीफ की, और पांचवी हन्नान की। तो मेहरबान के लिए कुरान में इस तरह पांच लफ्ज जो है वो आए हैं। तुम्हारा रब जो है बहुत ही शफीक और मेहरबान है, इसलिए अल्लाह ने ये सारी नियमतों से तुम्हें नवाजा है। वल खैल वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा वजीना व यखलुकु मा ला तालमून। और तुम्हें क्या नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं? फरमाया वल खैला, और तुम्हारे लिए घोड़े जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो पैदा किए। खैल, खैल जो है ये लफ्ज घोड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है और घुड़सवार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्लाह ने पैदा किए, और ये इस्म जिन्स है, वह जमा मुजक्कर मोनस भी इस्तेमाल होता है। वल बिगाला, बा गैन लाम इसका रूट है, खच्चर को कहते हैं। बगलुन वाहिद है और बिगाल जो है वो इसकी जमा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए खच्चरें जो है वो पैदा की। वल हमीरा, और हमीर जो है ये गधे को कहते हैं। हिमारुन इसकी जमा है और हमीरुन भी जमा है। तो ये क्यों दिए तुम्हें? ये तरकबूहा, ताकि तुम इस पर सवारी करो। वजीना, और ये तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। ये जो आयत का हिस्सा है ना, आठ नंबर आयत का आखिरी हिस्सा, इसको आप सर्कल कर लें। यखलुकु माला तालमून, और उसने वो बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। वह यखलुकु, और वो पैदा करता है, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। तो इससे क्या मुराद है कि वो तुम्हारे लिए वो चीजें पैदा करता है जो तुम नहीं जानते? मुफस्सरीन कहते हैं कि तीन जानवर, घोड़े खच्चर गधे का जिक्र करके अब यहाँ पे ये कह दिया वह यखलुकु मा ला तालमून। तो इसके मानी ये हैं कि अल्लाह वो चीजें पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। मसलन उस जमाने में रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, उस वक्त ये इजाद नहीं थे, पुराना जमाना था, तस्वुर भी नहीं था। और आइंदा जमाने में और क्या क्या इजाद हो सकता है, साइंस जो है और मजीद क्या क्या तरक्की कर सकती है, तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि कंप्यूटर में जो है वो कितनी ज्यादा इसके अंदर जो है वो मेमोरी होती है, या डिजिटल रिकॉर्डर है, आईपॉड है, आईफोन है, छोटी सी चिप है, छोटी सी चीजें हैं, और कितनी ज्यादा इसकी मेमोरी है। तो आइंदा वजूद में आने वाली तमाम नई इजादात का यहाँ पे अल्लाह ने जिक्र किया है। अब उनका उनकी काउंटिंग नहीं की, बल्कि कहा वह यखलुकु मा ला तालमून, और वो बहुत सी तुम्हारी फायदे की चीजें भी पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। तो ये है कुरान मजीद, जो जिसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो वुस्सत पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इस बात का भी जो है वो इस बात को भी आप जहन में रखें कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन जानवरों का जिक्र किया है, इसमें आप देखें कि जैसे ऊंट, अरब लोग ऊंट जो है उसको ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और आप देखें कि ऊंट सब जानवरों से ज्यादा बोझ उठाता है, जैसे गधा 5 मन या 2 बोरियां गल्ला उठा सकता है, घोड़े और खच्चर 3 बोरियां, ऊंट 4 बोरियां आसानी से जो है वो उठा लेता है। इसी तरह जो है वो और बहुत से जानवर हैं कि वो क्या करते हैं कि आप जो है उनको खड़ा करके उन पर बोझ लाते हैं। ऊंट के ऐसा ऐसा जानवर है बिठा कर उस पर बोझ लादा जाता है और बोझ समेत उठकर वो खड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बेशुमार जानवर हैं और अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए इनको जो है वो पैदा किया है। यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी जो नेमते हैं इनका जिक्र करते हैं और फिर साथ ही फरमाया कि जब ये सारी नेमते इंसान की जरूरत के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं, फअल्लाह यकसदु सबीली वमिनहा जाइर वलौ शाअ अलहदाकुम अजमईन, और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। वल्लाह कसदु सबील, यहाँ पे कसद का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है और कसद जो है काफ स्वाद दाल, ये सीधे और मुस्तकीम को कहते हैं, सीधे रास्ते को कहते हैं, और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ते का सीधा होना, ऐसा रास्ता जिसके अंदर कोई टेढ़ ना हो, पेच और खम ना हो। सिराते मुस्तकीम को भी कहते हैं, दरमियाने रास्ते को कहते हैं। जैसे आप जो है वो म्याना रवि के लिए भी एक लफ्ज इस्तेमाल करती ना इतदाल का, कि ना असराफ हो ना बुखल, तो उसको भी कहते हैं। तो कहा कि अल्लाह ही के जिम्मे है कि सीधा रास्ता बताए, तवाजुन का रास्ता बताए, व मिनहा जाइर, जबकि टेढ़े रास्ते बहुत से मौजूद हैं। जाइर का रूट है जीम वा रा और इसके मानी है हक से फिरने वाला, टेढ़ा, तो जबकि टेढ़े रास्ते जो हैं वो बहुत से मौजूद हैं। तो दरअसल अब ये नेमतों का जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एक अल्लाह की बंदगी करो, शिर्क छोड़ दो, और तुम शिर्क क्यों ना छोड़ो जब ये सारी नेमतें तुम अल्लाह से हासिल करते हो। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुनम हकीकी है, अल्लाह इन नेमतों का देने वाला है। तो अल्लाह से सारी नेमतें लेने के बाद फिर जिंदगी गुजारने के लिए जो रास्ता चाहिए वो फिर अकल का रास्ता क्यों लेते हो, फिर इंसानी फिक्र जो है उसके इजाद करदा रास्तों पर क्यों चलते हो, फिर अल्लाह का सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो है वो इख्तियार करो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तारीकियों में भटकते रहोगे। वा अल्लाह कसदु सबीली व मिनहा जाइर, ये जो आपने जो है वो ये आयत नंबर 4 में पढ़ा कि इंसान झगड़ता है, झगड़ने से मुराद क्या है, शिर्क करता है, तौहीद परस्त नहीं बनता। तो आयत 5 से लेकर 8 तक आपने नेमतों का जिक्र पढ़ा और आयत 9 में दोबारा वही बात कि जब सब कुछ ये करने वाला अल्लाह है तो उसी के जिम्मे है कि तुम्हें तौहीद का रास्ता बताता, सीधा रास्ता बताता, जबकि टेढ़े रास्ते भी मौजूद हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर वो चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। तो इसके मानी क्या है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको जबरदस्ती मुसलमान बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुनिया की जिंदगी जो है वो इम्तहान के लिए जो है वो पैदा की है, और जो है वो जो सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहता है तो अल्लाह उसको अपनी हदायत का रास्ता जो है वो दिखा देता है। और अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि वो जबरदस्ती जो है वो लोगों को मुसलमान बनाए। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि लोगों को जो है वो अल्लाह ताला ने इंतखाब की आजादी दी है, सही और गलत की तमीज दी है, अंबिया के जरिए किताबों के जरिए रहनुमाई की है। अब जो है वो नेकी के रास्ते पर चलना इंसान की अपनी जिम्मेदारी है और इसी में इंसान का जो है वो इम्तहान है, और इस इम्तहान की खातिर अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम को खोल खोल कर बयान कर दिया और वो है तौहीद का रास्ता। तो आइए तौहीद परस्त बने, आइए जो है वो सच्चे मुसलमान बने और ऐसे बंदे बने जिसे अल्लाह जो है वो राजी हो जाए। सूरत नहल आयत नंबर 10 से लेकर 23 तक कायनात से तौहीद के दलाइल दिए गए हैं। साबका आयात में आपने उन जानवरों के बारे में पढ़ा जिससे इंसान जो है वो जिन पे इंसान सवारी करता है, उनका गोश्त खाता है और उनके जरिए से सामान ढोता है और दीगर जो है वो दूसरे फवायद हासिल करता है। अब इन दो आयात में, आयत नंबर 10 से ले और 10 और 11 में उन चीजों का जिक्र किया गया है जो हमारे जिस्म के लिए गिजा का काम देती हैं, नबातात में से जो है वो गिजा का काम देती हैं। फरमाया वल्लजी अनजल मिनस समाई मा अल्लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। वही तो है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। यहां पर आसमान से नाजिल होने वाली एक अहम नेमत का जिक्र किया जा रहा है और वो नेमत है बारिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बादल ऊपर आसमान से पानी बरसाते हैं और उसके फिर क्या फवायद होते हैं। सबसे पहला फायदा कि लकुम मिनहु शराबुन, के उन बादलों में तुम्हारे लिए पीने का पानी है कि तुम उससे फिर पानी पीते हो। फिर इसकी इसका जो है वो दूसरा फायदा व मिनहु शजरुन, और पानी के जरिए से खेतियां उगती हैं। शजर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है शीन जीम रॉ। अक्सर तने पर खड़े रहने वाले दरख्त के लिए ये इस्तेमाल होता है और कभी जमीन से उगने वाली हर चीज के लिए भी जो है, जो जैसे घास है बेले वगैरह उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरी नेमत क्या है कि पानी की वजह से जमीन फिर जो है वो सब्जा उगलती है, हर तरफ हरियाली हो जाती है। फी ही तुसीमून, तो जब हर तरफ सब्जा होता है तो फिर आप लोग क्या करते हो कि फी ही इसमें तुसी मून, फिर इसमें तुम अपने जानवरों को जो है वो चारा खिलाते हो। यहां पे सीन वो मीन इसका रूट है तुसी मून का, और इसके मानी है कि जिसमें तुम चराते हो, फी ही तुसी मून, कि उस सब्जे में उस खेती में तुम चराते हो। सीन वो मीन जो है इसमें बुनियादी तौर पर दो बातें पाई जाती हैं, नंबर एक तलब करना, नंबर दो रवाना होना। तलब और रवानगी। अब जब जानवरों को भूख लगी होती है तो मालिक क्या तलब करते हैं कि उनके लिए खाना हो, उनके लिए चारा हो। जानवर क्या चाहते हैं, जानवर तलब करते हैं कि उनके लिए भी चारा हो। तो पहली चीज है कि भूख है और तलब है कुछ खाने की, दूसरी चीज यह है फिर उसके लिए रवाना हो जाना। तो इस तरह असौम लफ्ज ऊंट चरागाह में चरने के लिए चले गए, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। पीछे आपने जो है फिरौन के लिए भी पढ़ा था कि फिरौन जो था वो बनी इसराइल जो है उन पर जुल्म सितम करता था, तकलीफ देता था, यसूमूना वहां पे आपने ये लफ्ज पढ़ा है। और उसमें भी मतलब क्या है कि तकलीफ देना, तलब, और फिर उसके लिए जो है वो कोशिश करना। तो आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश के जो है दो फायदे बताए हैं, जिनमें से पहला फायदा यह है कि इंसान उनसे पानी पीता है और दूसरा फायदा यह है कि जमीन भी पानी पीती है। जमीन सरसब्ज होती है, खेतियां उगती हैं और उसके बाद जानवर जो है उससे चारा खाते हैं। फिर इसका तीसरा फायदा बारिश का और क्या है, युम बितू लकुम बिह जरा व जैतूना व नखील वल आनाब व मिन कुल्ली समरात। और इसी पानी से युम्बेदु उगाता है लकुम तुम्हारे लिए, इस पानी के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खेतियां उगाता है। जरा का लफ्ज जो है ये खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो, वह जैतूना और जैतून, जैतून का जो फल है ये सब्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, सलाद वगैरह में भी, और इसके अलावा ये फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और अरबों के यहाँ जैतून जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इसको सालन के तौर पे भी खाते हैं, इसका ऑयल जो है वो बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत नूर में भी इसकी जो है वो मिसाल दी है। तो दूसरी अहम नेमत जैतून का जिक्र किया गया है। और आप देख लें कि जितने भी इस वक्त ऑयल हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है वो जैतून का तेल है, भारी नहीं होता, हल्का होता है और सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर तीसरी चीज है इस आयत में, आयत नंबर 11 में, वन नखील और खजूर। यहाँ पे खजूर का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है, और खजूर के लिए जो है वो आप देखें तो एक और लफ्ज भी हमें मिलता है रतब का, रा तोए बा, और वो ऐसी खजूर को कहते हैं जो ताजा खजूर हो, ऐसी खजूर जो जिसके अंदर ताजगी हो, फ्रेश हो। और नखील का लफ्ज जो है ये इस्म जिन्स है, ये हर तरह की खजूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी नखला भी कहते हैं और फिर नखील। फिर अगली नेमत है वल आनाब और अंगूर, ऐन नून बा इसका रूट है, और अरबों के यहाँ अंगूर और अंगूर के जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल होता था, और अंगूर से जो है वो अंगूर जो है जैसे खेतियां जब वो लगाते तो अंगूर की बेलें जो है बाड़ के तौर पर खेतियों के इर्द गिर्द जो थे वो डाल देते थे। वल आनाब और अंगूर, अमिन कुल समरात, और फिर फरमाया और तरह तरह के दूसरे फल, समर वाहिद है, समरात इसकी जमा है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात से जो है वो मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र किया है कि बारिश जो है वो तरह तरह के फलों से और नेमतों से जो है वो जमीन को भर देती है, और इंसान इससे जो है वो फायदा उठाते हैं। ये सब करने वाला कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो ये दोनों जो आयात हैं, आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश से पैदा होने वाली नेमतों का जिक्र करते हैं और साथ ही बताते हैं कि एक बारिश उसे फिर रंगारंग की नेमतें कायनात में बिखर जाती हैं, और सारी की सारी नेमतें जो है वो इंसान की खिदमत पर लगी हुई है। और ये सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह, जो खालिक भी है और मालिक भी है। तो फिर एक ही अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, किसी और की बंदगी की गुंजाइश नहीं है, शिर्क जो है वो जायज नहीं है। इन नफीजा लिकल आया तल्ली कौमी यतफक्करून, इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौरव फिक्र करते हैं। अब आप देख लें कि ये यहाँ पे नेमतों का जिक्र करके तवज्जो दिलाई कि इन नेमतों से, इन निशानियों से कौन लोग फायदा उठा सकते हैं? जो इन पर गौर व फिक्र करते हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि नेमतें मिलने के बाद जो है उन पे गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि नेमतें जो हैं उन पर गौर व फिक्र किया जाए तो तौहीद का मुशाहिदा होने लगता है। खेती, दरख्त, फल, फूल, अंगूर, जैतून, खजूरें, खेतियां, ये सब जो हैं ये क्या हैं? ये अल्लाह है जो इनको पैदा करता है, कि दाना या गुठली जमीन के अंदर डालने से और पानी देने से खुद ब खुद तो ये चीजें पैदा नहीं होती। अजीमुशान पौधे, दरख्त, फल, फूल, इसमें जो है किसी किसान की मेहनत ही का दखल नहीं, बल्कि ये जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी खालकियत के मुजाहरे हैं, उसकी तखलीके कायनात का जिक्र है। फिर आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आफाकी दलील दी है, कायनात से दलील दी है। फरमाया कि सूरज चांद और सितारे वसी खला में इंतहाई सेहत के साथ मसलसल गर्दिश कर रहे हैं। वसखर लकुमुल लैला वन नहार, वही तो है कि जिसने मुसखर किया, खिदमत पर लगा दिया तुम्हारे लिए रात को और दिन को। वशम्स वल कमर, और सूरज और चांद। वन नुजूमु, और सितारे। मुसखरातुम बे अम्रे, सब उसी के हुक्म से मुसखर हैं। इन नफीजा लिकल आयातिल कौमी याकिलून, इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। सबसे पहले रात का जिक्र है और उसके बाद जो है वो दिन का। तो किस तरह रात और दिन जो है छोटे बड़े होते हैं, आप देख लीजिए कि आजकल जो है वो दिन छोटे हो रहे हैं और रातें जो हैं वो बड़ी हो रही हैं। और ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। फिर रात काली और दिन सफेद। रात को इंसान आराम करता है, सोता है, और दिन के वक्त इंसान जो है वो मेहनत करता है, काम करता है। तो रात और दिन जो अल्लाह की कुदरत की अजीमुशान निशानियां हैं, ये अल्लाह ने इंसान की खिदमत पर इनको मुकर्रर कर रखा है। फिर सूरज, सूरज जो है किस तरह अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और आप देखें कि सूरज की जो रोशनी है उसकी गर्दिश से, सूरज की गर्दिश से दिन और रात पैदा होते हैं। सूरज जब हमें रोशनी देता है, धूप और हरारत इसकी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर सूरज जो है वो थोड़ी देर के लिए तुलू ना हो, तो आप देखें कि किस तरह जो है वो हर तरफ जो है वो अंधेरा होता है, किस तरह जो है वो हर तरफ ठंड हो जाती है। फिर आप देखें कि चांद और सितारे ये भी हमें रोशनी देते हैं, अगर ये ना होते तो हर तरफ तारीकी होती, रातें कितनी डरावनी हो जाती। राह देखना तो दूर की बात, इंसान एक दूसरे को भी ना देख सकते। तो ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, इनके बहुत से फायदे हैं। तो यहां पर जो खास बात हमें बताई जा रही है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ये सब जो है वो मुसख्खर है। असल बात क्या है? मुसख्खरातुम बे अम्रे, ये सब अल्लाह का कहना मानती हैं। ये सब जो सैयारे हैं, ये जो नेमते हैं, ये सब अल्लाह की मुती हैं। तो इंसान तू भी अल्लाह का मुती हो जा। इन नफीजा लिखल आयातिल कौमी याकिलून, इसमें बहुत निशानियां उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। तो पहले कहा कि तफक्कुर करो, अब इसमें कहा कि अकल से काम लो। आयत नंबर 13, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रंगों का जो इख्तलाफ है इसका जिक्र किया है। इख्तलाफ अलवान फरमाया, वमा जरा लकुम फिल अर्दी मुख्तलिफन अलवानो, वमा, और जो पैदा किया, जरा पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, फिल अर्दे जमीन में, मुख्तलिफन मुख्तलिफ अलवानो उसके रंग है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में जो तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है तो उनके अंदर रंगा रंगी पाई जाती है। रंग के लिए कुरान में दो लफ्ज आए हैं, एक है रंग जैसे लॉन, जो कि कुदरती रंग होता है, नेचुरल कलर। दूसरा है सिबगा, सिबगा तो वो रंग होता है जो खुद चढ़ाया जाए। तो फरमाया कि जमीन के अंदर जो मादनियात है, नबातात, जमादात, हैवानात, और जो फल और फूल हैं, इनके अंदर जो है वो एक रंगा रंगी पाई जाती है। अब आप देख लें कि अगर आप रात के वक्त जो है वो आसमान का नजारा करें तो चांद और सितारे इंसान को एक बड़ा हसीन मंजर पेश करते हैं। आप किसी लहलहाते खेत में जाएं, किसी बाग की सैर करें, आप देखेंगी के दरख्तों के जो हैं मुख्तलिफ कद हैं, कोई लंबे कद वाले, बाज छोटे कद वाले, बाज दरमियाने कद वाले। इसी तरह वो शायर कहता है ना, चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। और फिर आप जो है वो फूलों को देखें, आप एक गुलाब को देख लें, कितने उसके रंग है, सफेद भी है, सुर्ख भी है, पीला भी है, और फिर उसके मुख्तलिफ शेड हैं। फिर एक ही फूल के जो मुख्तलिफ रंग है उनके मुख्तलिफ शेड हैं। फिर आप देखें कि उसकी जो पंखड़ियां हैं, उसके जो पत्ते हैं, उनका भी मुख्तलिफ साइज है। फिर आप देखें कि इन फूलों की मुख्तलिफ खुशबू है। तो इन सब से आप जो है वो लुत्फ अंदोज हों। आप सब्जियां देखें तो मुख्तलिफ तरह का उनका साइज है, रंग है, टेस्ट है। तो ये क्या है, मुख्तलिफ अल अनवानहू, के इसके अंदर जो है रंगारंगी जो है वो पाई जाती है। तो ये रंगारंगी, ये इंतजाम किसने किया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, इसमें जो है वो जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करते हैं। तो एक तरफ बारिश से पैदा होने वाली नेमतों का जिक्र है, दूसरी तरफ आसमान में जो सूरज चांद सितारे हैं उनका जिक्र है, तीसरी तरफ जमीन पर जो रंगारंगी है, रानाई है, उसका जिक्र है, और फिर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत समंदर की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि समंदर जो है ये भी अल्लाह की कुदरत का जो है वो शाहकार है। फरमाया, वहुवल्लज़ी सख्खर अल-बहरा, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया। अब आप देखें कि समंदर जो है इस सिलसिले में पहली जो नेमत याद दिलाई जा रही है वो समंदर का मुसख्खर करना है। कभी आपने सोचा कि समंदर की तलातुम खेज मौजें जो हैं, जब वो सर उठाती हैं तो तूफान बरपा कर देती हैं, तभी कौमे नूह जो है वो तबाही का शिकार होती है, और कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान या कैथरीना या मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सैलाब जब आता है, तूफान आता है, तो बस्तियों की बस्तियां, शहरों के शहर, गांव के गांव जो है वो लुकमाए अजल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इस समंदर को क्या किया, मुसख्खर कर दिया है कि ये ठाठे मारने वाला समंदर और इसकी जो तलातुम खेज मौजें हैं इन्हें अपने मखसूस कानून का पाबंद बनाया है। इंसान समंदर के पानी के अंदर और ऊपर जो है वो उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो गया है, और इंसान जो है इस पर बड़े बड़े डैम बनाता है, इससे बिजली जो है वो हासिल करता है। और फिर आप देखें कि समंदर जो है इसके यहाँ पर खास तौर पर तीन जो है वो फवायद का जिक्र किया गया है। पहला क्या है, लेता कुलू मिनहू लहमन तरीयन, ताकि तुम इसमें से तरोताजा गोश्त लेकर खाओ। लहम जो है ये गोश्त को कहते हैं, और यहाँ पर जो है समंदर का जो गोश्त है इससे मुराद है मछली और समंदर के जो पानी के जानवर हैं वो भी, और बिलखुसूस मछली का गोश्त इंतहाई लजीज होता है। तो अब मछली की शक्ल में जो ताजा गोश्त तुम खाते हो तो ये कौन देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। तरीयन जो है इसका रूट है तोए रा या, अमूमन गोश्त की तरोताजगी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर खजूर की तरोताजगी हो तो रतब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, चेहरे की तरोताजगी हो तो नदरतुन, और अगर दौलत की वजह से इंसान पर एक नेमतों की वजह से एक तरोताजगी का जो असर होता है उसके लिए नाइमत उनका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह मैंने आपको तरोताजगी के लिए चार लफ्ज, मुख्तलिफ लफ्ज बताए हैं। यहाँ पे जो गोश्त की तरोताजगी के लिए इस्तेमाल होता है वो है तरीयन, ये तरोताजा गोश्त। दूसरी नेमत है, व तस्तखरिजू मिन्हू हिलयतन तलबसूनहा, व तस्तखरिजू मिन्हू, और तुम इसमें से निकालो हिलयतन। हिलियतन जो है ये कहते हैं जेवर को, इसका रूट है हा लाम या, हा लाम या, और ये लफ्ज जेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि तुम इसके जरिए से जो है वो जेवर निकालो। अब आप देखिए कि समंदर के अंदर से मोती, सीप, हीरे, जौहरात जो है वो निकाले जाते हैं, मोंगे हैं, और औरतें इनके हार पहन बनाकर गले में पहनती हैं या कानों में पहनती हैं, और बाकी ये के बादशाहों के कंगनों में, उनके ताजों में और उनके तख्तों पर ये चीजें लगाई जाती थी, और ये सीप वगैरह बाज चीजें जो हैं, मोती वगैरह लोग कपड़े के ऊपर भी लगाते हैं। तो ये क्या है, ये जीनत का लिबास भी है और जेवर भी है, और इस तरह ये हीरे मोती अंगूठी में भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं नग के तौर पर। तो ये क्यों है, वतस्तखरिजु मिन्हु हिलयतन तलबसूनहा, और इससे जीनत की वो चीजें तुम निकालते हो जो तुम पहना करते हो। और जैसे बहरेन है तो वो नेचुरल पर्ल के लिए, रियल पर्ल के लिए मशहूर है, बड़े वहां के कीमती होते हैं मोती और बड़े आला उम्दा दर्जे के मोती होते हैं। तो इंसान ये सारी नेमतें कौन देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। और आप भी, आप देखें कि आपके पास जो कीमती जो है वो जेवर है, तो ये सब क्या है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। वह तरल फुल का मवाखिर फी ही, फिर तीसरी नेमत है कश्ती। अलफुल्क ये लफ्ज इस्म जिन्स है, ये वाह जमा मुजक्कर मोनस इस्तेमाल किया जाता है, और तुम देखते हो कि कश्ती मवाखिर फी ही कि वो समंदर को चीरती हुई चलती है। मवाखिर जो है इसका रूट है मीम खा रा, इसके मानी है पानी को चीरना फाड़ना। चीरना फाड़ना के लिए आप पहले क्या लफ्ज पढ़ चुके हैं, जैसे फजर लफ्ज आपने पढ़ा, वसी पैमाने पर फजर जो है वो रात के अंधेरे को फाड़ती हुई उसमें से फिर रोशनी निकलती है तो फजर कहते हैं। इसी तरह वो चश्मे फूट पड़े तो पीछे आपने पढ़ा था फन फजरत मिन हुस्नता इस्नता अशरा, तो फजर है एक लफ्ज। दूसरा जो लफ्ज आपने फटने के लिए पढ़ा, अभी आपने सूरत यूसुफ में पढ़ा कद्दत, कद्दत जो है वो कमीज का फटना है, कमीज का फटना लंबाई में फाड़ना। कद्दत आपने वहां पे कमीज के फटने के लिए पढ़ा था, लेकिन कद्दा कहते हैं लंबाई में, लंबाई के रुख पर फाड़ना। फिर आप आगे एक पढ़ेंगी सूरत कहफ में जो है वो किसी चीज को बिगाड़ने के लिए, फाड़ने के लिए आता है खरका, तो कश्ती के फाड़ने के लिए वहां पे आएगा। लेकिन यहाँ पे पानी को चीरना फाड़ना के लिए जो लफ्ज आया वो मवाखिरा का है। इसी तरह आपने शक्का भी पढ़ा था, शक्का शक्कल कमर, चांद का फटना, सख्त चीजों का फटना के लिए शक्का का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फरमाया कि तुम देखते हो कि कश्ती जो है वो समंदर को चीरती हुई जो है वो आगे बढ़ती है, वो चलती है। तो मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूर का सफर का रास्ता जो है उसके लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया है। और अब आप देखें कि जो कश्ती है ये सख्त चीज है, लेकिन ये जो पानी है उसको फाड़ती हुई जो है उसके ऊपर से आराम से जो है वो चलती चली जाती है। तो दरअसल यहाँ पे समंदर के मुसख्खर होने का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ने समंदर को तुम्हारी खिदमत पर मुकर्रर कर रखा है, और कश्तियां जो हैं एक गहरे और ठाठे मारते हुए समंदर के अंदर इसके पानी को चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम इस पर सवारी करो, तजारती सफर करके अल्लाह के फजल के तालिब बनो और शुक्रगुजार हो। अल तबतगू मिन फजलही, ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। तो फजल तलाश करने के मानी है हलाल तरीकों से अपना रिज्क हासिल करना, क्योंकि समंदर में कश्तियों और जहाज के जरिए लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, तजारती सामान लाते हैं, और ये क्या है, ये अल्लाह का फजल है। वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम फिर इसके शुक्र गुजार बन जाओ। तो ये नेमतें पाकर फिर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब आप देख लें कि ये अल्लाह का कितना खूबसूरत कानून है कि समंदर जैसी खौफनाक मखलूक को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फायदा मंद बनाया है। और आप समंदर में लोहे का टुकड़ा डालें तो फौरन डूब कर पानी की तह में चला जाएगा, मगर उसी लोहे को जब आप जहाज की शक्ल दे दें तो भारी बोझ लिए हुए समंदर में तैरने लगता है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंच जाता है। तो ये सब क्या है? ये अल्लाह के इंतजाम की सूरत है, खुश्की पर भी और समंदर पर भी। तो ये सब किसने किया? अल्लाह ने किया। तो ये इन नियमतों का जो जिक्र किया जा रहा है, इनका मकसद क्या है? नंबर एक, आयत नंबर 11 में कहा तफक्कुर करो, आयत नंबर 12 के आखिर में कहा कि अपनी अकल के जरिए से इससे जो है वो इबरत हासिल करो, आयत नंबर 13 में कहा कि तुम जो है फिर तजक्कुर करो। तो तफक्कुर, ताअक्कुल और तजक्कुर, इसके मानी है कि जब इंसान ये काम करता है तो फिर इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, फिर उस पर हकीकते इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, फिर वो अल्लाह का शुक्र गुजार बनकर जीना चाहता है, फिर वो अल्लाह की बंदगी करना चाहता है। इसी चीज की तरफ कहा जा रहा है वलअल्लकुम तशकुरून, और शायद कि तुम जो है वो शुक्र गुजार बनो। जैसे जो है वो वालदैन होते हैं और बच्चों को बताते हैं कि देखो तुम्हारे लिए ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, एक एक करके उनको जो है वो बताते हैं, समझाते हैं कि हम तुम्हारे वालदैन हैं और तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो मकसद क्या होता है? ताकि बच्चों के दिल में वालदैन के लिए शुक्र का जज्बा पैदा हो, मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। फिर इसके बाद आयत नंबर 15 और 16, इसमें जो है वो जमीन और आसमान की मजीद निशानियां जो है इनका जिक्र किया जा रहा है। वालकाफिल अर्दी रवासिया अन तमीदा बिकुम व अनहारों व सुबुल लअल्लकुम तहतदून व अलामात व बिन नजमी हुम यहतदून। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी। वह अलका, लाम काफ या लकिया, डाल देना, और लाम काफ वाओ भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके मानी है वह अलका और डाल दिए फिल अर्दे जमीन में, रवासिया पहाड़। रवासिया जो है ये भारी पहाड़ों को कहा जाता है, इसका रूट है रा सीन वो, और ये पहाड़ जो है ये तीन हिस्से जमीन के अंदर होते हैं और एक हिस्सा जो है वो ऊपर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जमीन को पैदा किया और जमीन में गहराइयां पैदा हुई और इनमें पानी जमा होकर समंदर बने तो जमीन हिलने लगी, इसके बाद खुश्की पर ऊंचे पहाड़ उभर आए। तो ये इसका मकसद क्या था? कि जमीन में तवाजुन कायम हो जाए। तो क्योंकि तीन हिस्से जो है वो पानी है और एक हिस्सा खुश्की है, और अगर जमीन की सतह पर ये तवाजुन ना होता तो इंसान यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता था। तो आयत नंबर 15 में खास तौर पर इस बात का जिक्र है कि जमीन पर पहाड़ों के उभार खड़े करके जमीन पर तवाजुन कायम किया। इसके लिए मैं आपके सामने ये मिसाल भी रखती हूं। जैसे आप देखें कि गाड़ी के पहिए होते हैं और अगर उनमें बैलेंस ना हो तो गाड़ी जो है पूरी की पूरी गाड़ी शिद्दत से जो है वो लरजने लगती है और वो बैलेंस नहीं होती, तो फिर आप व्हील बैलेंसिंग करवाती है ना, और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो उसके अंदर फिक्स होते हैं और जिसकी वजह से गाड़ी के व्हील जो है वो बैलेंस करवाए जाते हैं। इसी तरह पंखा है और अगर उसके एक विंग में, पर में कुछ खराबी पैदा हो जाए तो पूरा पंखा शिद्दत से लरजने लगता है। तो क्या करना पड़ता है कि पंखे को भी बैलेंस करवाना पड़ता है, वरना वो खचकोले खाने लगता है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि जमीन को बैलेंस करने के लिए, मुतवाजन करने के लिए अल्लाह ताला ने इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया ताकि जमीन जो है वो हरकत ना कर सके। ये जो तमीदा है इसका रूट है मीम या दाल, इसका मतलब है डगमगाना, कांपना, हरकत करना, माइल होना।
अच्छा
तो इसका जो है, इसकी वजह क्या है कि जमीन तुम्हें लेकर जो है वो ढुलक ना जाए। वह अनहारन और नहरें, दरिया पैदा किए, वह सुबुलन और रास्ते। तो नहर की जमा है अनहार, सबील की जमा है सुबुल, नहर की जमा है अनहार और सबील की जमा है सुबुल। और सबील जो है वो ऐसे रास्ते को कहते हैं जो कुशादा होता है, खुला होता है। पीछे आपने सिरात लफ्ज रास्ते के लिए पढ़ा था, और सिरात पुरपेच और तंग रास्ते को कहते हैं। फिर इसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम जो है वो हदायत हासिल कर सको। अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो नहरों का सिलसिला है ये भी बड़ा अजीब है, कहां से वो शुरू होती हैं, कहां कहां वो जाती हैं, कभी दाएं कभी बाएं मुड़ती हैं, कभी शमाल जनूब को, कभी मशरिक मगरिब को। तो और इन नहरों के साथ साथ जो है वो रास्ते बने हुए होते हैं। तो ये रास्ते जो है वो क्यों बने हुए होते हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम्हें, तुम्हारी रहनुमाई की जा सके। वो अलामात, ऐन या मीम, अलम, ये लफ्ज निशानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मानी जो है वो झंडे के भी होते हैं कि झंडा किसी मुल्क का सिंबल होता है, किसी जमात का जो है उसकी एक पहचान होता है, निशानी होता है। तो वो अलामात और निशानियां, तो इस जमीन पर मैदानी इलाके में ये जो पहाड़ हैं, ये जो नहरें हैं, ये निशानी का काम करते हैं। और इसी तरह खास तौर पर सहराई इलाकों में ये खास तौर पर जो है वो निशानी का काम करते हैं। अलामात ये क्या है, ये निशानियां हैं, रास्ते निकाले हैं ताकि तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सको। लैंडमार्क्स नहीं होते, लैंडमार्क तो एक तरफ क्या है, वबिन नजमी, और सितारे हैं, हुम यहतदून, कि लोग उससे जो है वो रहनुमाई हासिल करते हैं। अब आप देखिए कि आसमान पर जो सितारे चमकते हैं, इससे सहराओं के सफर में लोग रास्ते और सिमत और औकात का तायुन करते हैं। और ये सारी नेमतें गिनवाने का मकसद क्या है कि ये सारी चीजें तो अल्लाह की बनाई हुई हैं, अल्लाह की बख्शी हुई हैं, तो इबादत और अताअत भी अल्लाह की होनी चाहिए। तो जब अल्लाह के सिवा किसी और ने ये चीजें नहीं बनाई, तो फिर किसी और की बंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सवाल सामने रखा है जिसमें मुशरिकी ने मक्का को और हर दौर के शिर्क करने वाले लोगों को जो है वो डांटा गया है। अफमन यखलुकु कमल्ला यखलुक अफला तज़क्करून, फिर क्या जो वो पैदा करता है और जो कुछ वो पैदा नहीं करते दोनों यकसा हो सकते हैं? आ क्या फा पस मन जो, क्या पस जो कोई यखलुकु पैदा करता है, कौन है, अल्लाह ताला, का मानिद हो सकता है उसके मन जो ला यखलुक पैदा नहीं करता। तो अल्लाह और तुम्हारे जो बनाए हुए माबूद हैं, तुम्हारी मूर्तियां जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते। अफला तज़क्करून, क्या तुम होश में नहीं आते, फिर तुम शिर्क करना क्यों नहीं छोड़ते, फिर तुम अल्लाह की नाफरमानी क्यों नहीं छोड़ते, तुम फिर अल्लाह के अताअत गुजार जो है वो क्यों नहीं होते। वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, इन अल्लाह लगफूर रहीम। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब यहाँ पर गिनने के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, एक है अद्दा या उद्दू, इसके ये आम लफ्ज है और इसके मानी है गिनने के, और नेमत का लफ्ज इस जिन्स है। दूसरा लफ्ज है तोसुहा। तोसुहा जो है ये हा स्वाद या भी इस्तेमाल होता है रूट के तौर पर, और हा स्वाद वो भी, और इसका मतलब होता है कि जैसे बिल्कुल सही हिसाब रखना। और अहले अरब जो थे वो ये करते थे कि किंकरियां रखकर वो किसी चीज को गिनते थे। उस जमाने में ये कैलकुलेटर और कंप्यूटर और इस तरह की चीजें तो नहीं होती थी, तो क्या करते थे, एक एक किंकरी और पत्थर फेंकते जाते थे और फिर किसी चीज की काउंटिंग करते जाते थे। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपनी नेमते जो है, जो बेशुमार नेमते हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। और फिर आप देखें कि कुछ नेमतें तो अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं, और बाकी नेमतों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशारा किया है कि ऐ इंसान, अगर तू अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। इन अल्लाह ला गफूर रहीम, बेशक अल्लाह अलबत्ता बख्शने वाला, रहीम और माफ करने वाला है। अब आप देखें कि आप जरा गिनना शुरू करें कि आपके पास कितनी है अल्लाह की नेमतें। माशाल्लाह आप जवान हैं, आप जो बूढ़े लोग हैं जो अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए मोहताज है, आप उनसे पूछें कि जवानी कितनी बड़ी नेमत है। आप चलती हैं, आप भागती हैं, आप दौड़ती हैं, आप अपने काम करती हैं, जैसे चाहें करती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं, लेकिन बूढ़े जो हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। फिर आप देखें कि सेहत कितनी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आंख में दर्द है और आप सो नहीं पाई, दांत में शदीद दर्द है और आप कुछ खा नहीं सकती, आप कुछ कर नहीं सकती, आप सो नहीं सकती, और पूरा जिस्म जो है वो दर्द की वजह से जो है वो बुखार में मुब्तिला है। फिर इसी तरह खुदा ना खास्ता जो है वो जैसे घुटने का ऑपरेशन हुआ है या कोई और जो है वो तकलीफ है, तो आप देखें कि जब उठ ना सके, जब खड़े ना हो सके, तो अंदाजा होता है कि ये घुटना, ये टांगे, ये हाथ, ये पांव कितनी बड़ी नेमत है। और फिर आप देखें कि मेरे नेबर में एक बूढ़ी खातून रहती थी, तकरीबन 100 साल उनकी उम्र थी, उनका नाम फातिमा था, अम्मा फातिमा हम सब कहते थे, यही मिसी सागा की बात है। तो पिछले साल वो फौत हो गई, तो मैं उनके पास जाया करती थी उन्हें देखने के लिए, और मैंने उनसे पूछा, वो खाना जो था ना, फूड फू, फूड उनको पीस कर लिक्विड दी जाती थी, तो मैंने पूछा, और कभी कभार जैसे अगर कभी पका के कुछ भेजा तो कहते थे कि अम्मा को फूड ना भेजा करें, खाना ना भेजा करें, वो नहीं खा सकती। तो उनको जो है वो ये मेदे का, खुराक की नाली का जो है वो कैंसर हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा था कि अम्मा या तो खाना खा सकेंगी या बोल सकेंगी। तो अम्मा से पूछा था कि आप बताएं कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहती हूँ। तो मतलब खाना जो है वो तो चले, लिक्विड भी मैं ले लूंगी। तो इस तरह पता नहीं कितने सालों से अम्मा जो है वो आम खाना नहीं खा सकती थी, और उनकी बाजू, उनके हाथ वगैरह पतले पतले जैसे बहुत बारीक थे, कमजोर थी बहुत। लेकिन उनकी एक खूबी है जो मुझे याद आती है, मैं जब उनसे पूछती कि अम्मा आप कैसी हैं, हम जब जाते उनसे पूछती आप खैर कैसी हैं, तो कहती थी कि आसमान की तरफ वो इशारा करती और कहती कि उस रब का बड़ा शुक्र है, रब का बड़ा शुक्र है। 7-8 उनके बच्चे थे, और फुटपाथ पर ऐसे बाहर बैठी हुई कहीं मिली थी सर्दी के मौसम में ठिठरती हुई, कोई किसी बच्चे ने उनको नहीं रखा था। और फिर यहाँ पे वो ओल्ड हाउस है, कम्युनिटी सेंटर है, तो फिर उसके अंदर वो आई और अपनी जिंदगी के कई साल उन्होंने यहीं पे गुजारे, और फिर यहीं से उनकी जो है वो डेथ हुई। तो आप सोचें कि वालदेन जो है जब बूढ़े हो जाते हैं और कैसी जो है वो, अगर वो बीमार है, अगर वो तकलीफ में है, तो कैसे बोझ सा बन जाते हैं ना, कि औलाद जो है वो उनके लिए मुश्किल होने लगती है। तो आप इस वक्त जो जवान हैं और आप अपने काम सब अच्छे से करती हैं, तो आप इस पर सोचें कि कितनी बड़ी नेमत है। आप अपने हाथ को ही देख लें, ये पिछले दिनों सब्जी काटते हुए उंगली कट गई थोड़ी सी, और जो है वो जैसे बर्तन धोना या कुछ काम करना मुश्किल हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि ये 3 उंगलियों के साथ तो अब बड़ा मुश्किल है कि कुछ किया जाए। तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि, और होता रहता है, आप गौर व फिक्र करती रहे तो होता रहता है कि ये अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है। नाखून ही ज्यादा आपका कट जाए, आप देखें, आप अपने हाथ को लें, आप उसको खोलती हैं तो प्लेट बन जाता है, इकट्ठा करती हैं तो प्याला बन जाता है, उंगली को अलग करती हैं तो उंगली चम्मच बन जाती है। और यानी जिस भी तरह से आप गौर करें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर ये उंगलियां पांचों बराबर रखी होती तो आप ये काम नहीं कर सकती थी। छोटी हैं, बड़ी हैं, और ये क्या है, ये अल्लाह का मास्टरपीस है। तो आप अपने जिस्म को देखें, आप डॉक्टर से पूछें कि एक जिस्म के अंदर क्या एक सिस्टम है, पूरी एक कायनात है जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर फिक्स की है। वइन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसुहा, वइन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसुहा, इन अल्लाह ला गफूरुर रहीम। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है। आप देखें कि जिसकी औलाद नहीं है ना, उससे पूछें कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और जिनकी औलाद मौजूद है उनसे पूछें कि ऐसा ना हो कि वो औलाद की वजह से हर वक्त वो रोते रहें और कहें कि बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बहुत बड़ी नेमत है। और हमारे पास जो है ये अल्लाह की तरफ से पर्चे हैं, और हमें इनको अच्छे से हल करना है। ये ईमानते हैं, और अल्लाह ताला इन ईमानतों को हमारे लिए सदका जारिया जो है बना दे। तो आप क्या करें, आप अल्लाह की अता करदा नेमतों पे गौर व फिक्र करें। और औरतें जो हैं वो नशुकरी की बीमारी में ज्यादा मुब्तला होती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने जहन्नुम में औरतों को ज्यादा देखा। तो औरतें जो हैं वो नशुकरी ज्यादा करती हैं, जैसे जो है वो अगर हर वक्त जो है वो नेमतें मिलती रहें, अच्छे दिन रहें, और कभी एक दिन या 2 दिन या 4 दिन कोई मुश्किल आ जाए, तो औरतें जो है वो बिलबिला उठती हैं और चीखने लगती हैं। तो शौहर कितनी बड़ी नेमत है, उन औरतों से पूछे जिनके शौहर नहीं है, जो बेवा है। और इसी तरह जैसे बाज शौहर है वो अपनी बीवियों से कहते हैं कि आप जो है पैसे दे देते हैं, ये है पॉकेट मनी, ये है घर की ग्रोसरी के पैसे, और आप अपनी शॉपिंग कर लें। तो अब औरतें कहती हैं, लो जी हमें जो है ना वो नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अच्छा, दूसरों के लिए, और शौहर, कुछ शौहर है वो कहते हैं कि हम खुद ही कर लेते हैं, वो खुद अपनी ग्रोसरी सारे काम करते हैं। तो वो औरतें कहती हैं, लो जी हमें कभी पूछा ही नहीं। और फिर आप क्या कहती हैं कि जो है पकाऊं क्या, शौहर बता देते हैं, आप खुद ही कहती हैं कि क्या पकाऊं, कभी जो है कोई तो कभी तो बोले ना कि मैं क्या पकाऊं। जब वो बताते हैं ये पकाएं, तो कहती हैं, लो जी ये जो है वो इतनी मुश्किल चीज बता दी है, अब खुद ही आपने पूछा है, अब तो भुगतना पड़ेगा ना। और जो है वो अगर वो बताते हैं तो मुश्किल, अगर नहीं बताते तो फिर भी आप जो है वो कुछ ना कुछ बोलती हैं कि ये क्या मेरे लिए जो है वो मुश्किल है। तो असल बात क्या है कि आप जिस भी हाल में है ना, आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखें, और नेकी के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखें। और सेहत की कदर करनी है तो कभी कभार हॉस्पिटल का जरूर चक्कर लगाया करें, बीमारों की जरूर इयादत किया करें। जिंदगी की कदर करनी है तो जो मर जाते हैं उनकी ताज़ियत जरूर किया करें, जरूर इस पे सोचा करें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर ये तवज्जो दिला रहे हैं कि अल्लाह की जो अता करदा नेमते हैं इन पे गौर व फिक्र करें, ताकि हमारे अंदर शुक्र की कैफियत जो है वो पैदा हो। और साथ ही कहा कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसके मानी ये हैं कि अगर अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की अतात में कुछ कमी हुई है, तो अल्लाह जो है वो बड़ी मगफरत करने वाला और बड़ी रहमत करने वाला है, क्योंकि अगर कोई शिर्क करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मगफरत कर देता है, अल्लाह ताला उसे जो है वो माफ कर देता है। इन्ना अल्लाह ला गफूर रहीम वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो सब कुछ अल्लाह जानता है। इस आयत में जो है वो बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे सारे अमलों की खबर है, अच्छे भी और बुरे भी, और ये अल्लाह की जो है वो फयाजी और आली जरफी है कि वो मुजरिमों को उनके जुर्मों की वजह से फौरन पकड़ नहीं लेता, जो उसका हिल्म है और दरगुजर है कि वो लोगों को जो है वो मोहलत देता है। तो इंसान जो भी अमल करता है तो उसका जो है वो अजर या उसकी सजा जो है वो अल्लाह की तरफ से मिलने वाली है। वल्लाहु यालमु, तो अल्लाह अलीम है, उसके उसका जो इल्म है वो हम पर अहाता किए हुए है, और इसी इल्म की बिना पर वो कयामत के दिन जजा या फिर सजा देगा। फिर फरमाया वल्लज़ीन यदउन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैयअन व हुम युखलकून, और दूसरी वो हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी चीज की भी खालिक नहीं है बल्कि खुद मखलूक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो शिर्क करने वाले शिर्क करते हैं तो उनकी कोई भी हैसियत नहीं है। इसके माने क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी ने भी एक भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर एक इलेक्ट्रॉन या एटम या मॉलिक्यूल जो है कुछ भी नहीं बनाया, जरा सी चीज भी पैदा नहीं की। तो ये कौन चीजें पैदा करता है? ये अल्लाह पैदा करता है। तो जब अल्लाह सब कुछ करता है तो फिर अल्लाह ही की बंदगी जो है वो करनी चाहिए। वल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाही, और वो हस्तियां जिन्हें इंसान अल्लाह को छोड़कर पुकारता है। दूनी का लफ्ज जो है ये ज़विल अज़दाद में से है, ऊपर नीचे आगे पीछे, इसके अलावा इन मानी में ये इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह को छोड़कर जिन्हें ये पुकारते हैं शिर्क करते हैं, ला यखलुकून शैयन, वो कुछ भी पैदा नहीं करते, वहुम युखलकून, और वो बल्कि खुद मखलूक है, अमवातुन गैरु अहया, मुर्दा है ना कि जिंदा। तो मौत वाहिद है, अमवात उसकी जमा है, गैरु अहया वो जिंदा नहीं है। वमा यशऊरूना अय्याना युबअथून, वमा यशऊरूना, और उनको कुछ भी शऊर नहीं है, अय्याना कब, अय्यो होता है ना कौन, उसी से अय्याना है, कब युब अतून वो उठाए जाएंगे। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कब जिंदा करेगा। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। फल्लदीना ला युमिनून बिल आखिरती कुलूबहुम मुनकिरा वहुम मुस्तकबिरून। एक अल्लाह की बंदगी की दावत दी जा रही है, एक अल्लाह की बंदगी। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अन्नहल की आयत नंबर 22 में एक अल्लाह की बंदगी की दावत दी है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। तो कौन लोग हैं जो एक खुदा का इनकार करते हैं? फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। तो वो लोग आखिरत पर ईमान क्यों नहीं लाते? इसकी दो वजूहात जो है वो बताई गई हैं। नंबर एक, कुलूबहुम मुनकिरतुन, उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है, उनके दिल मुनकिर हैं। नंबर दो, वहुम मुस्तकबिरून, और वो घुमंड में पड़ गए हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखरत का इनकार उनको गैर जिम्मेदार बनाता है, उनको मस्त कर देता है, उन्हें अपने हुकूक की अदायगी की कोई फिक्र नहीं रहती, उन पर कोई इखलाकी बंदिश नहीं होती, उन्हें कोई एहसास नहीं होता कि किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो उनके अंदर इनकार पाया जाता है। तो इनकार जो है ये आखरत के मुनकिर जो है इनकी पहली सिफत है, और दूसरी क्या है, वह मुस्तकबिरून के वो तकबर करते हैं। अब तकबर जो है इसकी दो किस्में हैं, उनमें से एक किस्म तो ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह के जो दाई है उससे तकबर करता है, क्योंकि उस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अहले मक्का ने जो है वो कबूल ना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसियत रसूल के कबूल ना किया, उनको बेवजन समझकर नजरअंदाज कर दिया। तो ये है तकबुर, और ये तकबुर बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, और तकबुर सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह इंसान की हर गलती माफ कर देगा, मगर वो तकबुर को कभी माफ नहीं करेगा। तो एक तकबुर होता है जैसे आम तकबुर, जिसमें इंसान तकबुर करता है अपनी कुर्सी की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, अपने हुसन की वजह से, अपनी दौलत की वजह से, अपने साजो सामान की वजह से, अपनी डिग्री की वजह से, अपने आप को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा समझता है और तकबुर करने लगता है। जैसे शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तकबुर किया और कहा कि मुझे तो आग से पैदा किया गया और इंसान को मिट्टी से, और मैं इसको सजदा क्यों करूं, हालांकि अल्लाह के हुक्म को सजदा करना था। और उसने क्या किया कि तकबुर किया। और तकबुर क्या है कि लोगों को हकीर समझना और जो है वो हक का इनकार करना। बतारुल हकी व गमतुन नास। तो एक तकबुर की ये जो है वो किस्म है। दूसरी क्या है कि जो दाइये हक का इनकार किया जाता है। अब आप देख लें कि आप अब ये सोचें कि कहीं तकबुर की बीमारी मेरे अंदर तो नहीं पाई जाती, इसको कैसे पता चलेगा, तकबुर की बीमारी मेरे अंदर तो नहीं पाई जाती, आपके अंदर तो नहीं पाई जाती। तो उसमें से इसकी कुछ अलामत हैं, उसमें से एक अलामत तो ये है कि इंसान जो है वो अपनी गलती को कबूल नहीं करता। जिसके अंदर तकबुर पाया जाता है वो शौहर हो सकता है, वो बीवी हो सकती है, वो उस्ताद हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो बच्चे हो सकते हैं, बहन भाई दोस्त अहबाब कोई किसी भी किरदार में हो सकता है। गलती करता है लेकिन उसको कबूल नहीं करता, एडमिट नहीं करता कि मैंने गलती की है। जब इंसान अपनी गलती को एडमिट कर लेता है तो उम्मीद है कि किसी वक्त उसकी जो है वो इस्लाह हो जाएगी, लेकिन जब वो एडमिट नहीं करता, उसको तस्लीम नहीं करता, तो उसकी इस्लाह होना जो है वो नामुमकिन है। तो आप देखें कि क्या आपसे जब गलती हो जाती है, आप जो है वो अपने आप ऑफिसर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो है वो उस्ताद हैं, तो गलती हो सकती है। और आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, लेकिन उन्होंने जब गलती हुई तो उसको एडमिट किया, इकरार किया, और फिर अल्लाह ताला से माफी मांगी। शैतान की सिर्फ क्या है कि उसने गलती की, लेकिन उसने जो है वो अपनी गलती को एडमिट नहीं किया, कबूल नहीं किया और माफी नहीं मांगी। तो शैतान के किरदार में और आदम अलैहिस्सलाम के किरदार में ये फर्क है। तो शैतान के बारे में अल्लाह कहता है फअबा वस्तकबरा फकाना मिनल काफिरीन, तो उसने इनकार किया और उसने किब्र किया और वो काफरों में शामिल हो गया। तो आप भी देखें कि आप अपनी गलती जो है क्या इसको कबूल कर लेती हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा शख्स जो मुतकबिर होता है मशवरा भी कबूल नहीं करता, वो मशवरा नहीं कबूल करना चाहता। और तीसरी बात यह है कि वो अतात कबूल नहीं करता, वो के चाहता है कि लोग उसको कबूल करें, वो लीडर बनकर रहे, लीड ही करें, लेकिन वो अतात कबूल नहीं करता। और तकबूर की जो है वो एक और अलामत है, जैसे मक्का के जो सरदार थे वो क्या करते थे, वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। वहुम मुस्तकबिरून, और वो जो है वो घुमंड में पड़ गए हैं और घुमंड की वजह से वो आखिरत का इनकार करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी किब्र होगा। और आप भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने हुस्न की वजह से तकब्बुर की बीमारी में मुब्तिला हैं। आप याद रखें कि बीमारी का एक हमला हुस्न को फना कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी दौलत की वजह से किबर में मुब्तिला हैं। याद रखें कि दौलत ढलती छांव है, आज आपके पास है तो कल वो किसी के घर की गुलाम हो सकती है। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह से डरना चाहिए। अगर आपको अपनी जवानी की वजह से, जो कहीं ऐसा तो नहीं कि जवानी की वजह से किबर की बीमारी में मुब्तिला हैं, तो याद रखें कि जवानी ढलती छांव है, जवानी तो दीवानी होती है और ये चंद दिनों की बात है। मुजमिल हो गए कवा गालिब अब अनासिर में इतदाल कहां। बिल्कुल गैर महसूस तौर पर जवानी जो है वो इंसान जो है वो जवानी से ढलकर बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता रहता है। तो क्या करना चाहिए? बूढ़ों को देखकर, बड़ों को देखकर, छोटों को देखकर उनसे प्यार करना, उनके लिए कुर्सी को खाली कर देना, किसी ऐसी जगह पे है जहां इस तरह के लोग हैं उनके लिए खाना बना कर देना, या आपके अपने घर के अंदर आप सास है, ससुर है, वालदेन है और कोई चची ताई, कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, बीमार है, तो क्या करना चाहिए? उनका ख्याल करना। तकब्बुर की एक और अलामत है कि वो सलाम नहीं करता इंसान, वो नहीं चाहता, उसके अंदर आजिज़ी इंतसारी नहीं होती, वो नहीं चाहता कि वो लोगों को सलाम करे। अच्छा, अगर कोई सलाम करे वो जवाब भी नहीं देता, वो बड़ी भौंस के साथ, रौनक के साथ जो है वो अपना कल्ला फेर कर, अपना रुख फेर कर जो है वो चल पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, तकब्बुर जो है वो अल्लाह को सख्त नापसंद है। ला जरमा, ला नहीं, जरमा कोई शक। जरमा का लफ्ज जो है ये शक के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शक नहीं। अन अल्लाह यालमु मा युसिरूना वमा युलिनून इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। तहकीक वो मुतकबरीन को पसंद नहीं करता, उनसे वो मोहब्बत नहीं करता। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जो मुतकब्बिर हैं और जो रसूल अल्लाह पर और इस्लाम पर जो इतराजात करते हैं, वो अल्लाह उनके सारे इतराजात को जानता है। जो कुछ वो छुपाते हैं, जो कुछ वो जाहिर करते हैं, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह से कोई चीज जो है वो छुप नहीं सकती और अल्लाह जो है वो किब्र करने वालों को पसंद नहीं करता। मेरी प्यारी बहनों, इस कायनात की सबसे अहम हकीकत तो अल्लाह है, और अगर अल्लाह ही मोहब्बत ना करे, अल्लाह ही जो है वो मुतकब्बिरीन से बात करना पसंद ना करे, तो फिर क्या बनेगा ना? आप चाहती हैं ना कि अगर आप बीवी हैं तो आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे, अगर आप शौहर हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करे, आप वालदेन हैं तो आप चाहते हैं औलाद मोहब्बत करे, औलाद हैं तो चाहते हैं हमारे वालदेन मोहब्बत करें, उस्ताद हैं तो चाहते हैं कि शागिर्द मोहब्बत करें। आप जिस भी रूप में हैं, बहसियत मुसलमान के इंसान क्या चाहता है, बहसियत एक इंसान के आप क्या चाहते हैं कि दूसरे आपसे मोहब्बत करें। और एक तो है इंसानों की मोहब्बत, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता, तो ये कितनी बड़ी महरूमी है, ये कैसी बदकिस्मती है कि अल्लाह ही मुतकब्बिरीन से मोहब्बत नहीं करता। तो फिर क्या करना चाहिए? किबर को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए और अपने अंदर आजी और इंकसारी जो है वो पैदा करनी चाहिए। फरमाया कि जब अल्लाह खूब जानता है कि तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, और मैं मुतकब्बिरीन जो हैं उनको नापसंद करता हूं, तो फिर अल्लाह तो उनके अमल भी कबूल नहीं करेगा। फिर देखिए आयत नंबर 24 से लेकर 32 तक मुशरिकीन मुतकब्बिरीन की बात जो इतराजात है उनका हवाला दिया गया है। फरमाया वाइजा कीला लहुम माजा अंजला रब्बुकुम कालू असातीरुल अवलीन। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या नाजिल किया है, तो कहते हैं अजी वो तो अगले वक्त की पुरानी कहानियां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का चर्चा जब मक्का के इर्द गिर्द के इलाके में हुआ तो मक्के के लोग जब जहां कहीं जाते उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारे पास जो साहेब बनकर आए हैं वो क्या तालीम देते हैं, तुम्हारे पास जो साहेब पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं वो क्या तालीम देते हैं, कुरान कैसी किताब है। तो अहले मक्का ऐसा जवाब देते थे जिससे लोगों के दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में शक पैदा हो जाए और लोगों को आपकी नबुवत से कोई दिलचस्पी ना रहे। और बात कहते हैं कि यहाँ पे इस आयत में इशारा है नदर बिन हारिस की तरफ, वो कहता था कि ये कुरान जो है ये तो पुराने वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं, और वो गया था ईरान और वहां से असफन यार और रुस्तम के किस्से लेकर आया था ताकि लोगों को बगैर इल्म के भटका दे। दूसरी राय ये है कि इससे मुराद जो है वो मक्का के सरदार हैं, काफिर हैं, जो कि अल्लाह का इनकार करते थे, जो कुरान का इनकार करते थे। तीसरी राय ये है कि इससे हर कुफर करने वाला और इनकार करने वाला जो है वो मुराद है। जैसे आज देखे मुसलमानों में भी कहते हैं कि कुरान पर अब अमल नहीं हो सकता, आज के दौर में कुरान नहीं चल सकता, ये तो पुराने जमाने की बात है और मौजूदा दौर है, इसके जदीद तकाजे हैं। ये आयत नंबर 25 जो है ये बहुत ही जो है वो डराने वाली आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं लियहमिलू, ताकि वो उठाएं औजारहुम अपने बोझ, कामिलतन मुकम्मल, वो ऐसी बातें इसलिए करते हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर अपने बोझ उठाएं। औजार जो है ये वोजेरा जो है इसका रूट है वोजेरा, और इसके मानी होते हैं ये बोझ को कहते हैं, वजीर होता है जो दूसरे का बोझ उठाता है, विजरतुन ये लफ्ज भी जो है ये बोझ के लिए आता है, वजरतुन वाहिद है और औजार इसकी जमा है। तो ये लोग जो हैं ये बातें इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन अपने बोझ भी उठाएं मुकम्मल तौर पर। वमिन औजार लजीना युदिल्लूनहुम बिगैर इल्म, और उन लोगों के भी बोझ उठाएं जिन्हें ये बगैर इल्म के गुमराह कर रहे हैं। अला असा अमा यज़रून, अला खबरदार सुनो देखो, सा बुरा है। अब सा जो है इसका रूट सीन वो हमजा है, किसकी फैमिली का लफ्ज, आप सौवतुन शर्मगाह पढ़ चुके हैं, सैयतुन बुराई को कहते हैं, सैयात बहुत सी बुराइयां, साअत भी आपने पढ़ा था जहन्नुम के लिए आया था, तो ये मुख्तलिफ इसके जो है वो फैमिली के अल्फाज हैं। तो कितना बुरा है ये मा यजरून जो ये अपने सर जो है वो ले रहे हैं, जो वजन ये उठा रहे हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे आप सफर करती हैं और आजकल अगर आप पाकिस्तान जा रही हो, इंडिया या अपने किसी दूसरे कंट्री में, और आपको कोई सामान दे तो आप कहती है मेरा अपना वजन इतना है मैं नहीं ले जा सकती, और एक बहन तो कह रही थी भी मैंने तो किसी को बताती नहीं हूँ, इतना लोग सामान देना चाहते हैं और अपना नहीं ले जाया जाता, दूसरों का कैसे लेके जाए ना। और फिर आप देखें कि आप चलो सामान इतना जमा हो जाता है आप ले जाती हैं, और फिर एयरपोर्ट पर क्या होता है आप घर में भी तोलती हैं, फिर वहां जाके भी उसका जो है वो वेट किया जाता है और जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दिया जाता है, और कोई किसी की कोई मदद नहीं करता है ना। तो ये तो है दुनिया के सामान की बात, लेकिन यहाँ पर वो लोग जो गुनाहों में लीड करते हैं तो उनको अपने गुनाह की सजा भी मिलेगी और उसके साथ उन लोगों के गुनाह की सजा भी मिलेगी जिन्हें वो गुनाहों की दावत देते हैं, जिन्हें वो गुमराही की तरफ बुलाते हैं। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लोगों को हदायत की तरफ बुलाया तो इस शख्स को इन तमाम लोगों का अजर भी मिलेगा जो इसकी दावत पर हदायत का रास्ता अपनाएंगे, और जिसने गुमराही की तरफ बुलाया तो इसको इन तमाम लोगों के गुनाहों का बार भी उठाना पड़ेगा जो इसकी दावत पर गुमराह हुए। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। तो ये आयत नंबर 24 और आयत नंबर 25 जो है ये बता रही है एक तरफ के कुरान मजीद जो है आज भी इस पर अमल हो सकता है, और जो झूठे और मुनकिर हैं वो इसका इनकार करते हैं, और दूसरी बात ये कि जो भी मुनकिर है वो कयामत के दिन अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे और दूसरों का बोझ भी उठाएंगे। प्यारी बहनों, वो बड़ा ही मुश्किल वक्त होगा, और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ जो है वो नहीं उठाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, एक अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, और तकबुर को छोड़कर कुरान को जो है वो अपनी हदायत की किताब मानना चाहिए। अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र करते हुए फिर शुक्रगुजार बंदियां बनकर जो है वो जीना चाहिए, शुक्रगुजार बंदियां बनकर जीना चाहिए। और सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी गुफ्तगू का जरूर जायजा लिया करें कि मेरी गुफ्तगू में कितने जुमले जो हैं वो अल्लाह को नाराज करने वाले और अल्लाह की नशुक्री करने वाले हैं।